તારીખ 19/5/1996 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 572 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 565.
પત્ર 572 ચાલતા છે.
પત્ર 572 5754
કર ચલા હૈ. થોડા પુનરાવલોકન કર લે. વિતરાગ સર્વજ્ઞ દેવ જિનેન્દ્ર પરમાત્માને એક અખંડ સિદ્ધાંત કા પ્રતિપાદન કિયા હૈ કે કિસી જીવ કો તીવ્ર જ્ઞાન દશા આયે બિના વો મુક્ત નહીં હો સકતા. જ્ઞાન દશા કે બાદ તીવ્ર જ્ઞાન દશા મુનિ દશા આતી હૈ તભી વો મુક્ત હોતા હૈ. वो मुनि दशा कैसे होती है उसकी पहचान कुछ एक जीव को हो सकता है, जो योग्यता वाले होते हैं उनको हो सकता है. ऐसा नहीं है कि बाह्य त्याग संपूर्ण होने से उनकी पहचान हो जाए. वो तो द्रव्यलिंग को भी होता है, लेकिन ये सत्संग के योग्य नहीं है. तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि अज्ञान दशा की निवृत्ति करनी चाहिए. और अज्ञान दशा की निवृत्ति होना आसान नहीं है, वो भी एक कठिन परिस्थिति है, दुर्लभ परिस्थिति है. इसके लिए जिनेन्द्र परमात्मा ने ज्ञानी पुरुष के आश्रय करने रूप भक्ति मार्ग, ज्ञानी का आश्रय में रहने का, ज्ञानी की आज्ञा में रहने का फरमाया है कि ज्ञानी की आज्ञा में रहने से सुलभ रूप से ज्ञान दशा की उत्पत्ति हो जाए. इतनी कठिन नहीं पड़े, परंतु इस काल में तो ज्ञानी होने चाहिए, मिलने चाहिए. जब ज्ञानी नहीं हो तो उसका किसका आश्रय करें? ज्ञानी दुर्लभ हो गए, मुनि तो है ही नहीं. तो मुनि की पहचान का अवसर नहीं रहा. और इनकी दशा का विचार भी करना है तो ज्ञानी का आश्रय करना चाहिए. ज्ञानी का आश्रय कैसे होता है कि ज्ञानी पुरुष के चरण में मन को स्थापित करने से ज्ञानी का आश्रय होता है. उसमें भी कठिनाई है कि ज्ञानी पुरुष के चरण में मन को स्थापित करने के लिए पंचेंद्रिय के विषय जो होते हैं वो आड़े आते हैं, विरोध करते हैं, मतलब आड़े आते हैं. वो ज्ञानी पुरुष का आश्रय करने नहीं देते. तो इसके लिए क्या करना? जो मुद्दा चलता है आज वो तो वो है कि अपने परिणाम में जो पंचेंद्रियों के विषयों प्रति की आसक्ति है, जो ज्ञानी को की भक्ति भी करने नहीं देते, तो आत्मकल्याण तो कहां से करने देंगे? आत्मकल्याण में तो वितरागता होती है, ज्ञानी की भक्ति में तो सरागता भी थोड़ी रहती है। तो पंचेंद्रिय विषय प्रति के आसक्ति का जो राग है, वो राग ज्ञानी की भक्ति के राग को भी उत्पन्न देते हैं, उत्पन्न होने नहीं देते, राग राग को मारता है। वितरागता की बात तो बहुत दूर रही। ज्ञानी के प्रति जो परिणाम रहते हैं उसमें चारित्र गुण में तो सरागता है ही, श्रद्धा ज्ञान में जो लाभ होता है वो अलग बात है, मिश्र परिणाम है, एकदम वितरागता तो नहीं है। मुमुक्षु की भूमिका में एकदम वितरागता तो है ही नहीं, बात चलती है मुमुक्षु की भूमिका की, तो सराग दशा तो है ही। वो सराग दशा संसार के विषयों में जाती थी, पंचेंद्रिय के विषयों में काम करती थी, मन वहां लगा रहता था। वो मन ज्ञानी के चरणों में स्थापित करने का है, तो उसमें अगर तीव्र आसक्ति रहती है तो ज्ञानी के चरण में मन की स्थापना होती नहीं, आश्रय भक्ति आती नहीं, और आश्रय भक्ति नहीं आती तो पहचान हो करके आगे बढ़ने की तो बात होती नहीं। जैसे कि आसक्ति का तीव्र राग होगा तो ज्ञानी की भक्ति नहीं उत्पन्न होगी और अभक्ति भी हो जाएगी कभी, और आश्रय भक्ति तीव्र होगी तो आसक्ति का राग को मारेगा, वो आसक्ति छूट जाएगी। ऐसा जो मन अपनी प्रिय चीज पर है और लगा रहता है, उस मन को ज्ञानी के चरण में स्थापित करो। तो सजीवन मूर्ति की पहचान होगी, वरना जो मन बाह्य पदार्थ में कहीं भी एक भी व्यक्ति या एक भी वस्तु या एक भी प्रसंग पर लगा रहता है, वो मन उतनी मलिनता को उत्पन्न करता है कि उसका ज्ञान ज्ञानी को मुनि को वीरेंद्र के स्वरूप को पहचानने अयोग्य हो जाएगा। ये परिस्थिति हो के कारण अब ये विषय चल रहा है। तीसरा पैराग्राफ से लेते हैं कि ये पंच विषयादि दोष हैं, उसको मिटाने के लिए हो सके तो उससे दूर रहना, उससे दूर रहना। दूर रहने से प्रवृत्ति मिटती है, प्रवृत्ति मिटती है तो उसको मिटाने का विचार का अवकाश रहता है, समय मिलता है। तो जिसकी भूमिका कमजोर है, अधिक ज्यादा कमजोर है, उनको तो दूर रहना अच्छा है, और फिर भी दूर रहना नहीं हुए तो प्राप्त साधन में उदासीनता रखनी, जो भी पंचेंद्रिय के विषय के साधन है उसमें उदासीनता रखनी। उदासीनता रखनी अथवा दूसरा क्या करना, ऐसा मैंने करके उदासीनता रखो, या तो उस साधनों में से अहम बुद्धि छोड़ देना, ये चीज मेरी है, ये व्यक्ति मेरी है, ये उदय प्रसंग मेरा है, तो अपनापन छोड़ना है। फिर भी जो परिणाम होते छूटेगा तो नहीं, छोड़ने का प्रयास करेंगे तो मंद होएगा अपनापन, छूटेगा तो ज्ञान दशा में, लेकिन मंद अवश्य होगा, रस टूटेगा। तो साथ साथ जो प्रवृत्ति होवे तो रोग रूप जान करके प्रवर्तन करना, मेरे ये परिणाम मिटाने के लिए मेरी समर्थता नहीं है, मैं असमर्थ रहता हूँ, ये रोग है कैसे मिटे इसकी चिंता करना। रोग उत्पन्न होता है तो उसकी चिंता रहती है, वैसे ऐसे विभाव परिणाम का रोग की चिंता रख करके प्रवृत्ति में रहना, प्रवृत्ति में रहना होवे तो उस प्रकार से रहने से उदासीनता आ जाएगी। अनादि दोष के ऐसे प्रसंग में विशेष उदय होता है, ऐसे ऐसे प्रसंग में मैंने कोई जीव जब अपना दोष मिटाने के लिए तैयार प्रयास करता है तब ऐसा ही उदय उसके सामने आता है, क्योंकि पूर्व में इस प्रकार के दोष जो बांधे थे किए थे, उसके कर्म बांधे थे, उसकी स्थिति जो है उस अपकर्षण हो करके, मैंने स्थिति कम हो करके वो उदय में आने लग जाते हैं, क्योंकि आत्मा यह दोष को छेदने के लिए अपने सन्मुख लाते हैं कि लाते हैं कि मैंने लाते हैं उसी वक्त एक नई बात खड़ी हो जाती है कि ये उदय स्वरूपांतर करके उसको आकर्षित करता है, दूसरे प्रकार में उदय आकर के उनको भ्रमणा में डाल देता है। ऐसी परिस्थिति कहीं बार बनी है हर एक जीव को, और ऐसी परिस्थिति में जीव हार गया है, बार बार ऐसा ही बनता है, इसलिए संसार में से छूटना आसान नहीं हुआ, कठिन रहा, यही कारण से तो कि जब जब जीव ने दोष छोड़ने का प्रयास किया, उदय प्रसंग स्वरूपांतर करके सामने आया, जीव पहचान नहीं सका कि यह भी मुझे फंसाने का ही एक प्रकार है, तो मुझे फंसना नहीं चाहिए, तो समझ में नहीं आया और तो हार जाता है। इसलिए जीव संसार से निकल नहीं सकता, छूट नहीं सकता, ऐसा ही बनता रहता है। वो स्वरूपांतर करके उसको आकर्षित करता है और जागृति में शिथिल करके अपने में एकाग्र बुद्धि करा देता है, वो उदय है उसमें एकाग्र बुद्धि हो जाती है, दूसरे प्रकार से वो चालू रहता है। जैसे किसी ने व्यवसाय आदि प्रवृत्ति छोड़ दी, निवृत्ति ले लिया। निवृत्ति में कोई न कोई तो उदय रहेगा, बिना उदय वाला कोई जीव तो है नहीं। पहले व्यापार में एकाग्रता करता था, अब निवृत्ति में जो उदय रहा उसमें एकाग्रता करने लगा। तो जागृति नहीं रहती है तो ऐसा होता है। व्यवसाय से निवृत्ति लेकर के आत्म जागृति में रहा तो जो भी उदय आएगा उसमें सावधान होगा, जागृत रहेगा। जागृत नहीं रहा तो फिर वो की वो परिस्थिति हो जाती है। वह एकाग्र बुद्धि ऐसे प्रकार की होती है कि अम्बालाल भाई भी निवृत्त हुए थे, व्यवसाय से निवृत्त हो गए, एक साल में निवृत्त हो गए। कृपालु देव मिले, एक साल में अपना व्यवसाय छोड़ दिया वकालत का। फिर वो लालचंद, अम्बालाल लालचंद, लालचंद जी उनके नाना नाना थे, पिताजी नहीं थे, पिताजी का नाम अलग है। उनके जो एक ही पुत्री थी जो इनके लड़के थे अम्बालाल भाई, तो इनके सब मिलकर इनके वारसा में आ गई। उसमें 300 बीघा जमीन थी। निवृत्ति ले लिया क्योंकि पैसे की इतनी जरूरत नहीं थी, खुद संपन्न थे। वो 300 बीघा जमीन भी जो खेडूत खेती करता था उनको दे दी। तो मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, तुम अभी तक काम किया है तो तुम्हें उसको मालिक बन जाऊंगा। हम आत्मकल्याण होना तो आसान था, योग्यता भी ठीक थी, लेकिन एकता बुद्धि उदय में जो होती है निवृत्ति लेने वाले को भी वो सम्यक दर्शन को प्राप्त होने देती है। ये तो एक दृष्टांत है, लेकिन हम लोग जो निवृत्ति लेते हैं व्यवसाय पूरा करके, कुछ उम्र होकर के निवृत्ति लेनी जरूरी होती है, या तो शरीर भी उतना काम नहीं करता तो सहज निवृत्ति हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में विशेष सावधानी जरूरी है। निवृत्ति का संतोष नहीं लेना है कि चलो प्रवृत्ति तो नहीं करते, और जब निवृत्ति लेते तो स्वाध्याय आदि भी होता है, स्वाध्याय सत्संग पूजा भक्ति, ये तो मुमुक्षु के योग्य प्रवृत्ति चलती है। इसके सिवा जो उदय की प्रवृत्ति रहती है उसमें जागृति अगर शिथिल रही या नहीं रही तो जो एकाग्र बुद्धि हो गई, एकता बुद्धि हो गई, वो एकता बुद्धि सम्यक दर्शन को प्राप्त हो करने देगी। वो तो प्रवृत्ति होगी, लेकिन बहुभाग वहां भूला है, कुछ ने कुछ शुभोपयोग की प्रवृत्ति में फंस जाता है। व्यवसाय करता था तब भी एकता बुद्धि थी, व्यवसाय छोड़ दिया तब भी एकता बुद्धि, अब क्या कहां फर्क हुआ? सम्यक दर्शन तो एकत्व बुद्धि मिटने से होती है, तो उसमें तो फर्क हुआ नहीं। जैसे सुगानी जी कहते कि एक दुकान बंद करके दूसरी दुकान खोल दी है, ये बात हो गई। उद्देश्य के भूल गए, मुझे क्या करना है उसकी सूझ नहीं आई, वो बात है। तो प्रश्न है, पंचेंद्रिय विषय प्रति उदासीनता, जैसे ज्ञानी पुरुष का सानिध्य बढ़ने से बढ़े वैसे बढ़ती है कि पहले उदासीनता आए पीछे मन ज्ञानी पुरुष के चरणों में स्थापित हो सके, या मन सहज साथ में होता है, दोनों प्रकार बनता है। किसी जीव को उदासीनता ज्ञानी पुरुष के सानिध्य आने से आ जाती है, इसके पहले नहीं आती है, लेकिन ज्ञानी पुरुष के चरण में मन लग जाता है तो उदासीनता आती है, पहले नहीं आई हो और इस प्रसंग में आ जाती है। तो किसी को पहले उदासीनता चालू होती है और फिर ज्ञानी पुरुष के चरणों में मन स्थापित अच्छी तरह से हो जाता है, क्योंकि दूसरा आकर्षण नहीं है उसको, तो उनके लिए आश्रय भक्ति प्राप्त होना सहज होती है। अलग अलग योग्यता वाले जीव होते हैं, एक प्रकार के जीव संसार में नहीं है, सभी जीव की योग्यता अलग अलग है। योग्यता अलग अलग होने से उपदेश का प्रकार भी विविध, विविध प्रकार का उपदेश भी क्यों चला कि योग्यता विविध होने से, उपदेश तो दवाई है और योग्यता में जो अयोग्यता है वो रोग है, योग्यता मैंने अयोग्यता जो है वो रोग है, जैसे रोग वैसी दवाई, जैसे रोग वैसी दवाई। इसलिए कहते हैं ना कि शास्त्र तो उपदेश का भंडार है, मैंने मेडिकल स्टोर है, सब दवाइयां इसमें है। अब हमको ज्ञानी के सानिध्य में प्रिस्क्रिप्शन लेकर के दवाई लेना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा रोग कैसा है और किस दवाई से मिटेगा, इसलिए मेडिकल स्टोर की दवा बिना प्रिस्क्रिप्शन अगर हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है, कभी बहुभाग तो गड़बड़ हो ही जाएगी। ये बात होती है, इसलिए मुमुक्षु को ज्ञानी का चरण सानिध्य बहुत आवश्यक रहा, उसको मार्गदर्शन मिलता है तो वो छूट सकता है, वरना छूटना आसान नहीं है, अनजाने मार्ग पर चलता है, मार्ग छोड़ करके और जगह चला जाता है। होता है, उतना विवेक हो गया तो बच गया, और उतना भी विवेक नहीं हुआ तो उतना विवेक करने का भी उपदेश मिलता है। जैसे कृपालु देव ने कहा कि एक सत्पुरुष को खोज, सर्वभाव मैंने अपना सर्व अभिप्राय छोड़ करके यानी समर्पण करके, या प्रकृति आदि भाव सर्वभाव समर्पण करके प्रवर्तन करे जा, मोक्ष नहीं मिले तो मेरे से ले जाना, इतना समर्थ गारंटर मिलेगा भी कहां, गारंटी देने वाला भी समर्थ पुरुष है कि हम तुम्हारा मोक्ष की गारंटी लेते हैं। कब कि अगर सत्पुरुष के चरण में सर्वभाव समर्पण करके तुम वर्ते, तो
हम मारकर टोक के मेरे सही मार गया।
वो बात उन्होंने 76 नंबर के पत्र में किया है, और ये इनके अनेक भावों का अनुभव का निचोड़ है कि तुमको कुछ नहीं समझ में आए तो उतना तो समझ में आना चाहिए कि तुमको रोग हुआ है, बहुत भयंकर भव रोग में तुम फंसा हुआ है, और इस रोग से छूटना के लिए तुझे ये भव रोग निकालने वाले अच्छे वैद्यकीय डॉक्टर की तुम्हें जरूरत है। रोगी को डॉक्टर चाहिए उसमें ज्यादा बुद्धिमानी की जरूरत नहीं है, ये तो गांवड़े के गंवार को भी समझ में आता है, और वो भी शहर में चला आता है जहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं वहाँ। तो चलो भाई, बहुत भयंकर रोग है, मिटता नहीं है, क्रॉनिक हो गया है, अच्छी दवाई कराने के लिए कोई अच्छे डॉक्टर के पास जाना होगा। तो सामान्य बुद्धि से समझ में जो बात आती है, ऐसी बात हम बुद्धिमान लोगों को समझ में नहीं आती है, ये एक दर्शन मोह का बहुत बड़ा प्रभाव है कि जिस कारण से इतनी सीधी सादी बात भी सूझती नहीं है। ये सूझ का विषय है कि मैं भवरोग में फंसा हुआ हूं, मेरे विभाव परिणाम मैं नहीं चाहता भी फिर भी पैदा हो ही जाता है, बाद में तो पता चलता है कि ऐसा हो गया तो हो गया, वो तो नहीं हुआ होता नहीं, करे भी क्या, और ये परिस्थिति लगातार चालू है। ऐसे क्रोनिक भयंकर रोग को मिटाने के लिए डॉक्टर चाहिए, ये समझाने की आज जरूरत पड़ी, ये भी एक बहुत करुणता है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि ये बात भी समझानी पड़ती है, वरना वो तो गवार को भी समझ में आए ऐसी बात। फिर भी ज्ञानियों ने करुणा करके वो बात कही, और इस तरह से कही, इसका प्लेसिंग कितना मार्वेलस है, कैसे टोन में कही, गारंटी दे दिया कि इस संसार रोग से छूटने के लिए हम तुम्हारे गारंटर बनते हैं, तुम्हें उतना ही विवेक करना है कि एक सत्पुरुष को खोजना है और इसकी आज्ञा में रहना है, सर्वभाव अर्पण करना, मैंने आज्ञांकित रूप से रहना है, बस उतना हो गया तुम्हारा मोक्ष सिक्योर है, हम उसका गारंटी लेते हैं। वास्तविकता समझ में नहीं आती कि मेरा रोग कितना भयंकर है, अनंत जन्म मरण की यातना कितनी भयंकर होती है, कई बातें नजर सामने तो दिखती है।
आपसे तो कुछ पहले प्रश्न प्रतिबंध है, तो ज्ञानी के पास जो चीज है कि सबसे एक साथ मुख्य रूप से आपने कहा था कि प्रबंधन की वास्तविकता समझ आ गई, तो एक साथ सब जगह हो सकता है।
भव भ्रमण की वास्तविकता समझ में आए और सर्वभाव समर्पण करने रूप आश्रय भक्ति में आ जाए, उसको सेफ गार्ड हो गया, तो मुमुक्षु बिल्कुल सही सलामत निकल जाएगा। दो बात उनके समझ में रहनी चाहिए। ऐसा है कि पारमार्थिक हेतु से कोई त्याग करता है तो ऐसा नहीं होता है, केवल त्याग करता है तो ऐसा बनता है, लेकिन त्याग के पीछे पारमार्थिक हेतु है, आत्मकल्याण का हेतु है तो ऐसा नहीं बनता। त्याग करने वाले जीव धर्म के क्षेत्र में दो प्रकार के होते हैं, एक तो त्याग के हेतु से त्याग करता है, उसमें उनका वो अभिप्राय है कि ये पदार्थ मुझे दोष कराता है इसलिए इस पदार्थ को मैं छोड़ दूं। तो त्याग के हेतु से त्याग करता है, उनको अहंभाव भी होगा और वो त्याग में टिक पाएगा भी नहीं, टिकेगा नहीं। और एक पारमार्थिक हेतु से त्याग करता है कि मेरा दोष मेरे से होता है, दोष में कोई आश्रय स्थान है, दोष का भी कोई आश्रयभूत वस्तु होती है, तो मैं दूर रहूं तो ठीक है, मुझे दोष में तो वो उस साधन से उस निमित्त से दूर रहता है, उस वक्त प्रयास चालू रखता है। पारमार्थिक हेतु से त्याग करने वाला मुमुक्षु त्याग करके अपना दोष मिटाने का प्रयास चालू रखता है, वो प्रयोग करता है उस वक्त, उसको प्रयास कहते हैं। और जिसको ऐसा लक्ष्य नहीं है वो त्याग करके संतुष्ट हो जाता है, चलो मैंने वस्तु छोड़ दिया, मैंने त्याग कर दिया, तो उस वो पद्धति ठीक नहीं है। कार्य पद्धति यथार्थ होनी चाहिए सभी बात में, ज्ञान करो तो ज्ञान में भी यथार्थ पद्धति से ज्ञान करो, स्वलक्षी त्याग करो तो यथार्थ पद्धति से त्याग करो, परमार्थ हेतु के कारण से, पारमार्थिक हेतु को रख करके कोई भी बात हो, यथार्थता आवश्यक है, वरना यथार्थ रूप से किया हुआ ज्ञान और त्याग, कुछ भी प्रवृत्ति हो, कुछ भी धर्म साधन हो, उससे उसका अहम भाव पर्याय बुद्धि नहीं गई होने से, चालू रही होने से अहम भाव आए बिना रहेगा, ये हो ही जाएगा। जैसे कि हम उनके हमारे परिणाम लगते थे वो पदार्थ से हम दूर चले गए, अब हमारे परिणाम का अवलोकन करें क्या हो रहा है, खिंचाव होता है कि नहीं होता है, होता है तो क्यों होता है, इसके पीछे मेरा अभिप्राय क्या है, आधार बुद्धि है, सुख बुद्धि है, भोक्ता बुद्धि है, क्या बात है, हम लोग कौन करें, विचार का अवकाश प्राप्त होता है, प्रयोग का, पुरुषार्थ का, प्रयास का अवकाश प्राप्त होता है, और उस वक्त भी देखे कि उस निमित्त के संसर्ग में भी मैं तो सिर्फ परिणाम करता था, और जब ये साधन से मैं दूर रहता हूं तब भी मेरे को तो भाव ही होता है, मेरा आत्मा क्या कर सकता है, लेकिन जब निमित्त का सानिध्य रहता है तब कर्ता बुद्धि मेरी तीव्र हो जाती है, अब मैं परिणाम मेरा होता है, मैं कर सकता तो नहीं, कर्ता बुद्धि को वो कमजोर तो अपने विचार से अपने प्रयोग से कर सकता है,
राम मान होता है तो अभिमान आएगा ना,
कोई अवगुण नहीं होगा। आश्रय भक्ति में आया, बच गया। उसको तो क्या हुआ कि एक समर्थ पुरुष को अपनी जिम्मेवारी सौंप दी। मैं तो चिट्ठी का चाकर, आप बोलो ऐसा कर लो, और मैं कुछ समझता नहीं हूं, ना मुझे और कोई समझना भी है। बात खत्म। क्योंकि मैं मेरी योग्यता को नहीं जानता। मेरी योग्यता कैसी है वो मैं खुद नहीं जानता। दर्द को तो डॉक्टर समझता है, दर्दी थोड़ी ना समझता है। डॉक्टर समझता है बराबर, तो डॉक्टर कहे ऐसा करना पड़ता है, बात खत्म। शरीर के लिए हम कर लेते हैं, आत्मा के लिए हम करते नहीं है, वही बड़ी आपत्ति है। ये बीज भूत भूल रही है। वो कहा है 198 में कहा है, तो जीव कुछ भी करता है लेकिन सजीवन मूर्ति के लक्ष्य बिना जो कुछ करता है वो जीव को नया बंधन खड़ा करता है। यही हमारा हृदय है। बहुत तरीके से कई बातें रखी हैं, कितना रखने, बात रखने की पद्धति कितनी सुंदर है और कितनी विचक्षणतापूर्ण है। निश्चय में निश्चय अर्थ की योजना ज्ञानियों के हृदय में रही है। निश्चय में मैंने वास्तव में निश्चय अर्थ की योजना, मैंने निश्चय आत्मकल्याण होवे ऐसी योजना ज्ञानियों के हृदय में रही है। इस जीव के लिए ये योजना है, इस जीव के लिए यही योजना है। उनको ऐसे चलना चाहिए, उनको वैसे चलना चाहिए, वो सब ठिकाने आ जाएगा।
वर्तमान मार्गदर्शन जो दिया जाता है योजना के अंतर्गत है,
वो तो जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे बात चलेगी। पहले कहेंगे कि परिभ्रमण के वेदना में आओ, वेदना अच्छी चली तो बोला कि लक्ष्य हुआ कि नहीं हुआ पूर्णता का, पूर्णता का लक्ष्य करो, नहीं हुए वहां तक वही चलना चाहिए। उसको लक्ष्य हुआ बोला कि अवलोकन चलता है कि नहीं चलता है, अवलोकन करो, अवलोकन करता है तो भिन्नता रहती है कि नहीं रहती है, भिन्नता अवलोकन में आती है कि नहीं आती है, तो मेरी पहुंच मेरे भाव में संपूर्ण होती है, मेरे भाव से आगे मेरा कोई कार्य क्षेत्र नहीं, अवलोकन में आता है कि नहीं आता है देखो। तो जिस स्टेज में उस स्टेज की तो चर्चा कर लेंगे। यहां कहते हैं कि जीव को उदय बदलते ही जागृति अगर नहीं रहती है तो एकता बुद्धि हो जाती है, और उस एकता बुद्धि में भी ऐसा प्रकार हो जाता है कि मुझे यह प्रवृत्ति से ऐसा कोई विशेष नुकसान नहीं होएगा। पूजा करता हूँ, भक्ति करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, शास्त्र पढ़ता हूँ, पर निवृत्त तो हुआ ही हूँ, इस प्रवृत्ति से मुझे कोई नुकसान होगा, विशेष नुकसान नहीं होगा। क्योंकि उतना कषाय तीव्र नहीं होता है, कषाय उतना तीव्र नहीं होता है, लेकिन रस तो कितना तीव्र हो गया उसका पता खुद को नहीं चलता। यानी जिस भूमिका में है उस भूमिका का उसको परिणमन चलना, यथार्थ परिणमन चलना चाहिए। तो एकता बुद्धि कमजोर तो होती जाएगी, तो कमजोर होगी तब तो छूटेगी, कमजोरी नहीं होगी तो छूटेगी कहाँ से। तो मुमुक्षु की भूमिका में तो दर्शन मुंह को शिथिल करना है। जो दर्शन मोह शिथिल होगा, यानी दर्शन मोह को रोग लग जाएगा तो मरेगा। मांदो पड़े उम्र से, यानी मांदो तो पड़ी दियो जो बीमार होगा दर्शन मोह को बीमार कर दो, कमजोर करके, बीमार करके कमजोर कर दो, बीमारी आएगी तो मरेगा वो। हाँ, स्वच्छंद के परिणाम मुझे बाधा नहीं होगी, मैं अनुक्रम से उसको छोड़ूंगा या प्रवृत्ति करते वक्त मैं जागृत रहूंगा। विकल्प ऐसा करता है, जागृति नहीं है। हाँ, इसलिए जागृति नहीं रहेगी, अभिप्राय हो गया इसलिए जागृत रहूंगा ऐसा विकल्प है, जागृति आएगी नहीं। वो तो कहना चाहते हैं ये भ्रांत दशा है। हाँ, वो तो स्वच्छंद हो गया इसलिए उसको भ्रांत दशा से दोष किया है, अभिप्राय पूर्वक का दोष हुआ है। जिससे यह दोष का संबंध जीव छोड़ता नहीं, या तो ये दोष बढ़ जाता है छोड़ता नहीं, और ऐसे में ये दोष बढ़ जाता है क्योंकि अंदर में रस तो बढ़ता रहता है, तो दोष बढ़ जाता है एकता बुद्धि का, और उसका लक्ष्य भी उसको आ सकता नहीं है, और अपने को ख्याल में नहीं रहता है कि मैंने दोष कैसे बढ़ा दिया। स्वच्छंद में तो हो ही जाता है। ज्ञानी पुरुष के चरण में मन स्थापित करने का जो समय दृढ़ निर्णय होता है, उसके साथ पंचेंद्रिय विषय के विषय में के रस, पंचेंद्रिय विषय के रस के सामने लड़ने का बल प्राप्त होता है, तभी उदासीनता निरंतर सहज रहती है। तो फिर साधन का त्याग करने का प्रयास करना, हाँ फिर प्रयास करो, दोनों प्रकार लो। जब बल आता है, उदासीनता बढ़ती है, तो फिर साधन छोड़ना, कोई साधन पर रुचि हो तो मत छोड़ो जब रुचि नहीं है तो रहे नहीं रहे क्या फर्क पड़ता है, नहीं रहने से, रहने नहीं रहने से कोई तकलीफ तो नहीं है, तो ठीक है, फिर इसका कोई महत्व नहीं है।
ऐसे भाव और ऐसी प्रवृत्ति काला नाम देखा है।
और उसका त्याग भी दो प्रकार से होता है, एक साधन के प्रसंग की निवृत्ति, दूसरा प्रकार तो विचार से उसका तुच्छता समझ में आए, तो फिर कोई आपत्ति नहीं है, तो परिणाम खींचेगा नहीं। तुच्छता आएगी तो परिणाम का खिंचाव रहेगा नहीं, परिणाम का खिंचाव छूट जाएगा, टूट जाएगा। ऐसा दो प्रकार है, त्याग करने का भी यहाँ तक रखते हैं क्योंकि और संदर्भ नहीं है। ठीक है, पौने दस तो कल वहां तक बनाए थे कि ये विरोधी साधन का दो प्रकार से त्याग हो सकता है। एक तो साधन के प्रसंग की निवृत्ति, परमार्थ हेतु लक्ष्य में रख करके त्याग का हेतु से त्याग नहीं करने की बात है। यहाँ तो उपदेश देते हैं उसमें यथार्थता की बात है कि परमार्थ का हेतु रख करके उस प्रसंग को छोड़ देना, अपना अपनी योग्यता और परिणाम की शक्ति को देख करके। और दूसरा प्रकार वो कि विचार से उसका तुच्छपना समझना, चाहे त्याग करे या नहीं करे उसका तुच्छपना तो समझना चाहिए। परमार्थ हेतु मैंने आत्मकल्याण की भावना का कारण से हम त्याग करते हैं, वैसे ही त्याग नहीं करते हैं। हाँ, त्याग करने के कारण से त्याग नहीं है, आत्मकल्याण का हेतु से हम छोड़ते हैं। तो हमारा हेतु के अनुसार हमारा ध्यान, हमारा लक्ष्य हमारे भाव के प्रति रहेगा कि भाव में क्या हुआ, वरना हमारा लक्ष्य त्याग पर रह जाएगा, हेतु नहीं होगा। तो हमने छोड़ा तो सही, छोड़ तो दिया, त्याग तो किया, ये बात हो जाएगी। ऐसे संप्रदाय में लोग त्याग करते हैं, क्या परिस्थिति है, भाई त्याग जड़ क्रिया में करते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, परिणाम बिगड़ते हैं, खुद को बांध रहते नहीं है, ये बात होती है कि नहीं होती है। ऐसे उपवास करते हैं, उपवास करते हैं फिर पालना करते हैं, क्या हालत होती है देखिए। उपवास में भी परिणाम बिगड़ते हैं, कई लोग सो जाते हैं, कई लोग नाटक सिनेमा देख लेते हैं, कोई गेम्स में चले जाते हैं, कोई एंटरटेनमेंट के अलग अलग साधन को ग्रहण कर लेते हैं, तो उपवास के दौरान भी परिणाम बिगड़े, फिर खाना खाने की बारी आई पालना में और परिणाम बिगड़े, तो उसका परमार्थ हेतु से त्याग हुआ नहीं है। क्यों? तो उसका लक्ष्य अपने परिणाम पर रहेगा नहीं, त्याग तो किया नहीं, त्याग तो किया नहीं, कोई बात रहेगी। चलिए तो सुबह चर्चा कर लेते, एक आसन करते हैं, एक आसन मैंने एक आसन पर बैठ करके खाना, आसन बदलना नहीं, खड़े नहीं होना बीच में, फिर कितना खाएगा, सुबह का भी खाएगा, दोपहर का भी खाएगा। अरे एक आदमी तो बीड़ी पीता था, बीड़ी भी पी लिया उसमें, कि मैं सारे दिन में तीन चार बीड़ी पी लेता हूँ, तो तीन चार बीड़ी दो ढाई घंटे में पी लिया, तो फिर बाद में मुझे कुछ लेना नहीं है तो बीड़ी भी नहीं पीना है। अब मेरे तो आदत है बीड़ी पीने की, तो दो ढाई घंटा एकासन किया, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, बीड़ी पीना, दोपहर की चाय, तो दोपहर में कोई आदत होगी सिंह चना खाने की, तो सिंह चना भी खा लिया और शाम के खाखरे भी खा लिए, सब क्यों कि क्रिया पर नजर है कि हमने देखो दो दफे नहीं खाया, दो आसन नहीं किया, परमार्थ हेतु तो ख्याल में नहीं है उसका, तो बात ऐसे हो जाएगी और परिणाम बिगड़ेगा तो कहीं पता चलेगा। विचार से विचार पूर्वक तुच्छता समझने के लिए प्रथम यह पंच विषय आदि के साधन की निवृत्ति करना ज्यादा योग्य है, अधिक योग्य है, क्योंकि इससे विचार का अवकाश प्राप्त होता है। ऐसे कई प्रकार से बाह्य त्याग को विशेष रूप से ज्ञानियों ने प्रतिपादन किया है, कई बातों से, कई कारणों से, लेकिन कारण छोड़ दिया और कार्य को पकड़ दिया। ये अधूरी समझ से काम करते हैं, वो काम सही होते नहीं है, उसका फल भी यथार्थ नहीं मिलता। तो तुच्छता समझाने के लिए, जिसको तुच्छता नहीं समझ में आई है, ऐसी योग्यता वाले की ये बात है कि जिसको तुच्छता समझ में नहीं आई हो, उनको तुच्छता समझने के लिए ये साधन के प्रसंग की निवृत्ति कर लेनी चाहिए। तो निवृत्ति में उसका विचार तुच्छता का वो करे, इसलिए सिर्फ निवृत्ति करने की बात नहीं है। और तुच्छता समझ में नहीं आई और प्रवृत्ति करेगा तो दूसरा पक्ष ले ले कि योग्यता तो तुच्छता समझने की है ही नहीं और त्याग भी नहीं किया, तो क्या होगा कि प्रवृत्ति में रस आए बिना रहेगा तो वो तो डूब जाएगा, वो तो डूब जाएगा। यह पंच विषय आदि साधन की निवृत्ति सर्वथा करने का जीव का बल नहीं चलता हो तब, देखो कहाँ तक मार्गदर्शन दिया है कि कोई ऐसा भी मुमुक्षु आएगा कि देखिए हम, हमारा तो त्याग करने का भी बूता नहीं है, हम तो प्रवृत्ति को छोड़ भी नहीं सकते, इसलिए हम इस साधन से दूर नहीं जा सकते, अब क्या करें कि क्रमशः, क्रमे क्रमे मैंने क्रमशः, और अमुक अमुक उसका त्याग करना चाहिए। कितना मार्गदर्शन दिया है, आहिस्ते आहिस्ते उसको कम करो, एक साथ नहीं छोड़ सकते हैं तो छोड़ने का प्लान बना लो, क्रमिक प्लान बना लो, कैसे छोड़ना। परिग्रह तथा भोग उपभोग के पदार्थ का अल्प परिचय करना चाहिए। परिग्रह हो, मैंने जो भी प्राप्त संयोग है वो परिग्रह है, जिस पर अपनत्व रहता है, ममत्व रहता है कि ये मेरा है, और जो पदार्थ हैं प्राप्त भोग उपभोग के, उसका उसमें अल्प रस लेना, अल्प परिचय करना, मतलब क्या कि इसका जो अनुभव होता है उस वक्त रस आता है, वो अनुभव के काल में दुर्लक्ष करना, उदासीनता रखना, अल्प रस में प्रवृत्ति करना, उसको अल्प परिचय कहते हैं। परिचय मैंने क्या, ज्यादा परिचय मैंने क्या, ये चीज बहुत बढ़िया है, तो उसकी खूबियां देखने लगेगा, तो ये मिठाई बहुत अच्छी है, क्यों बहुत अच्छी है, अरे उसमें उतना तो केसर डाला है, उसमें वो चीज महंगी है, उतना तो वो डाला है, उतना तो वो है, पर उस प्रकार से बनता है, उसमें बनने में उतना परिश्रम है, वो है वो है वो है, और ये चीज खास सीजन में ही मिलती है वरना बनती भी नहीं है, पर फलाने जगह बनती है तो फलाने जगह उत्पन्न होती है और जगह मिलती नहीं, कई प्रकार का इसकी महत्ता बढ़ाने का बात हो जाता है, वो उसका परिचय बढ़ा दिया। और दुर्लक्ष किया तो क्या खाया क्या नहीं खाया ध्यान दिया
नहीं।
अल्प परिचय करना चाहिए, ऐसे करने से अनुक्रम से यह दोष फिक्के पड़ते हैं, ऐसा प्रयोग करने से, देखो ये प्रयोग की बात होगी, अनुक्रम से यह दोष फीके पड़ते हैं और आश्रय भक्ति दृढ़ होती है। दोष फीके पड़ते हैं, आश्रय भक्ति में आया है, आश्रय भक्ति दृढ़ हो जाएगी। दोष फीके नहीं पड़ेंगे, दोष बढ़ते जाएंगे, आश्रय भक्ति छूट जाएगी, आई होगी तो भी, या तो होगी नहीं, और आश्रय भक्ति दृढ़ हो जाए। तथा ज्ञानी के वचन का आत्मा में परिणाम होकर के तीव्र ज्ञान दिशा प्रकट होकर के जीवन मुक्त हो जा रहा है। एक पंक्ति में तो मोक्ष तक की बात कर दिया है कि आश्रय भक्ति दृढ़ होवे तो ज्ञानी के वचन आत्मा में परिणमित हो जाए, परिणमित होने से ज्ञान दशा आवे, ज्ञान दशा होने के बाद तीव्र ज्ञान दशा होवे, तीव्र ज्ञान दशा होने के बाद जीवन मुक्त दशा अरिहंत दशा हो जाए। एक अनुक्रम से दोष को फिक्का करे यानी कषाय रस को तोड़े तो दर्शनों का भी अनुभव घटेगा, ज्ञान में भी निर्मलता आएगी और आश्रय भक्ति पात्रता आएगी, तो आश्रय भक्ति भी दृढ़ हो जाएगी। आश्रय भक्ति दृढ़ होने से और दर्शन वो कमजोर हो जाएगा और दोष फीके हो जाएंगे, एकता बुद्धि टूटेगी, ज्ञान दशा आएगी, मुनि दशा आएगी और मुक्त दशा हो जाएगी। जीव कभी कभी ऐसी बात का विचार करे, कभी फुर्सत मिले तब, इससे अनादि अभ्यास का बल कम होना कठिन पड़े। कभी कभी विचार करे, ऐसा नहीं चले, अनादि विपरीत प्रैक्टिस चल रही है, अनादि अभ्यास में विपरीत प्रैक्टिस, वो बलवान है, वो कमजोर नहीं होते। परंतु दिन दिन प्रतिदिन, दिन दिन प्रति मैंने प्रतिदिन, प्रसंग प्रसंग में, मैंने हर उदय में और प्रवृत्ति प्रवृत्ति में, उदय के काल में जो जो प्रवृत्ति होती है उस वक्त मैंने चालू वर्तमान काल में, देखो आगे पीछे की बात नहीं लेते हैं, फिर विचार करे, बार बार उसका अवलोकन करे, वो सुल्टी प्रैक्टिस होगी, उल्टी के सामने सुल्टी प्रैक्टिस, वो भी लगातार सुल्टी प्रैक्टिस, सतत प्रैक्टिस का भी सातत्य सातत्य होना जरूरी है। हाँ, विचार मैंने प्रैक्टिस, क्योंकि प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रसंग प्रसंग लिया ना, इसलिए तो अनादि अभ्यास का बल घटता है, उल्टी प्रैक्टिस का बल सुल्टी प्रैक्टिस से टूटता है। प्रैक्टिस के सामने प्रैक्टिस चाहिए, विचार के सामने विचार चाहिए, अभिप्राय के सामने अभिप्राय चाहिए। वो तो जो साथ सामने दुश्मन है उतना ही साधन लेना पड़े, बम के सामने बम रखना पड़े, तलवार के सामने तलवार चाहिए, लकड़ी के सामने लकड़ी से लड़ना चाहिए। तो अनादि अभ्यास का बल टूट करके अपूर्व अभ्यास की सिद्धि हो करके, अभ्यास लिया नहीं वहां प्रैक्टिस लिया, अपूर्व प्रैक्टिस की प्राप्ति हो करके सुलभ ऐसा आश्रय भक्ति मार्ग सिद्ध होता है, मैंने प्राप्त होता है। तो जो आश्रय भक्ति मार्ग सुलभ है, कठिनाई वाला नहीं है, वो प्राप्त हो जाता है, वो कठिनाई वाला नहीं है ऐसे कहते हैं, लेकिन अपना दोष तीव्र हो तो कठिन लगता है, अपना तीव्र दोष नहीं हुए तो कठिन नहीं लगता है, सुलभता से भी प्राप्त होता है, कईयों को सुलभता से भी प्राप्त होता है। हाँ, आश्रय से मुक्ति तक की बात ले लिया, ठीक।
हाँ,